रात का 10:30 बज रहा था। हवेली के चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। दूर से बस झिंगुरों की आवाज़ आ रही थी और हवेली के भीतर से एक कमरे की हल्की पीली रोशनी बाहर फैल रही थी। वही कमरा जहां विश्वनाथ अकेला बैठा था। कमरे में सिगार और कॉफ़ी की महक एक साथ तैर रही थी। सामने शीशे की दीवार के उस पार हवेली का बाग दिखाई दे रहा था, लेकिन उसकी आंखें वहां नहीं थीं। कांच की टेबल पर आधा भरा कप रखा था, बगल में फ़ोन और उसके चेहरे पर वही ठंडा निश्चिंत एटीट्यूड। हाँ, शेयर डील कल ही फाइनल करनी है, उसकी आवाज़ धीमी मगर आदेश भरी थी। मुझे कोई एक्सक्यूज़ नहीं चाहिए, जो भी कीमत हो खरीद लो। अगर वो कंपनी बिकने से मना करे तो उसके बोर्ड मेंबर खरीद लो। उसके लहजे में एक ऐसी ठंडक थी जो किसी के भी रगों में सिहरन भर दे। फ़ोन के उस पार से किसी ने कुछ कहा तो उसने हल्का मुस्कुराते हुए जवाब दिया, पैसे से सब बिकता है शर्मा, बस रेट सही लगाना आता होना चाहिए। वो कुर्सी पर थोड़ा पीछे झुका। उसकी उंगलियों में काली कॉफ़ी का कप था। भाप ऊपर उठ रही थी और उसकी आंखें धुंध में छिपे किसी अंधेरे ख्याल में गुम थीं। उसका कोट अब भी वही था जो सुबह से पहने हुए था, नीला, थोड़ा मुड़ा हुआ। टाई ढीली पड़ चुकी थी, लेकिन उसने उसे हटाने की ज़रूरत नहीं समझी। बाल बिखरे, आस्तीनें हल्की मुड़ी हुईं, फिर भी हर चीज़ में वो ठहराव था, वो आई ओन द वर्ल्ड वाला रॉब जो उसके आसपास के माहौल को भारी बना देता था। कॉफ़ी की चुस्की लेते हुए उसने दूसरा कॉल उठाया। हाँ राजन, बोलो। हाँ, सब माल पहुंचना चाहिए सुबह तक, देर हुई तो पूरा कॉन्ट्रैक्ट रद्द समझो। और सुनो, किसी को भी मेरे नाम से डरना चाहिए, समझे? उसकी आवाज़ और गहरी हो गई थी। कुर्सी पर बैठा वो आदमी किसी बिजनेसमैन से ज़्यादा किसी डॉन जैसा लग रहा था जो फैसले नहीं फरमान सुनाता है। फिर वो थोड़ा मुस्कुराया, मगर वो मुस्कान तंज भरी थी। धीरे से बोला, लोग मुझे निर्दयी कहते हैं, सही कहते हैं, क्योंकि ये दुनिया दया से नहीं डर से चलती है। उसने फ़ोन में इस पर रख दिया। कमरे में अब बस घड़ी की टिक टिक और उसकी सांसों की आवाज़ थी। वो उठा, खिड़की के पास गया। बाहर का अंधेरा घना था। हवेली के गार्डन में हवा से पत्ते हिल रहे थे। उसने नीचे देखा, फवारे के पास का हिस्सा अब भी टिमटिमा रहा था। सब कुछ कंट्रोल में है, उसने खुद से बुदबुदाया, फिर एक लंबी सांस खींची, जैसे हर सांस में भी वो ताकत को निगल लेना चाहता हो। वो वापस सोफे की ओर आया, कॉफ़ी फिर से उठाई, और तभी बाथरूम के अंदर से पानी गिरने की आवाज़ आई। वो ठिठका, सिर थोड़ा झुकाया और ध्यान वहीं टिक गया। श्यामली नहा रही थी। कमरे के उस हिस्से से हल्की भाप बाहर निकल रही थी और दरवाजे के नीचे से पानी की पतली सी धार फर्श पर बह रही थी। विश्वनाथ ने एक पल को कॉफ़ी का कप नीचे रखा। चेहरे पर कोई भाव नहीं था, लेकिन आंखों में कुछ बदल गया था। वो जानता था श्यामली ऐसे वक्त में कभी बाथरूम नहीं जाती। वो हमेशा सबके सो जाने के बाद अकेले, शायद ताकि कोई उसकी थकान ना देख सके। उसने घड़ी की ओर देखा, 10:35। एक और कॉल की घंटी बजी, पर उसने नहीं उठाया। बस धीरे से बोला, इनफ बिजनेस फॉर टुनाइट। वो उठकर खिड़की से हटकर टेबल के पास आया और कॉफ़ी ख़त्म की। भाप उसके चेहरे से टकराई और उसी वक्त अंदर से एक जोर की चीख सुनाई दी, आह! विश्वनाथ का चेहरा एक पल को सख्त हो गया। उसने कप जमीन पर रख दिया और सीधा दरवाजे की तरफ बढ़ा। श्यामली! आवाज़ में डर नहीं था, बस झटका। उसने बाथरूम के दरवाजे पर दस्तक दी। श्यामली, क्या हुआ? भीतर से कोई जवाब नहीं, सिर्फ पानी की तेज़ धारा और फिर किसी चीज़ के गिरने की आवाज़। उसका जबड़ा कस गया। उसने हैंडल घुमाया, बंद था। डैम इट! उसने जोर से एक झटका दिया, दरवाज़ा नहीं टूटा। दूसरा झटका, थड़ाम! इस बार ताला उखड़ गया। भाप बाहर निकली और फर्श पर पानी फैला हुआ था। वो अंदर घुसा, दीवारों पर धुंध, आईना पूरी तरह धुंधला और टाइल्स पर पानी की पतली परत चमक रही थी। विश्वनाथ! विश्वनाथ की भारी आवाज़ पूरे बाथरूम में गूंज गई। वो झुककर देखने ही वाला था कि तभी एक तीखी चीख, आह! और अगले ही पल भाप के बीच से श्यामली दौड़कर सीधे उसके सीने से आटक रही। वो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं कर रहा था। पानी की हल्की बूंदें अब भी उसके गले और शर्ट पर गिर रही थीं। क्या हुआ? उसकी आवाज़ अब भी सख्त थी, मगर उसमें हैरानी थी। श्यामली कांप रही थी, दोनों हाथ कसकर उसके सीने पर टिके हुए। बाल गीले थे, चेहरा पीला, आंखों में डर, जैसे किसी बड़ी आफत से बची हो। वो उसकी आवाज़ कांपी, वो कॉकरोच! विश्वनाथ पलकें झपकाते हुए बोला, क्या? हाँ, वहाँ बाथरूम के पास। वो लगभग फुसफुसा रही थी, डर अब भी उतरा नहीं था। विश्वनाथ ने एक गहरी सांस ली, आंखें ऊपर उठाई, जैसे अपने गुस्से को रोक रहा हो। फिर उसने उसकी ओर देखा, तुम इतनी जोर से चिल्लाई सिर्फ एक कॉकरोच के लिए? श्यामली ने सिर झुका लिया, अब भी उसके पास ही खड़ी थी। धीरे से बोली, मैं बचपन से डरती हूँ उनसे। उसकी आवाज़ में वो सच्ची घबराहट थी जो किसी बनावट की नहीं लगती। विश्वनाथ ने पल भर उसे देखा। वो पूरी तरह भीगी हुई थी, लेकिन कपड़े पहन चुकी थी। साड़ी के पल्लू से पानी टपक रहा था और उसके गले के पास अब भी कुछ बूंदें ठहरी थीं। उसने खुद को थोड़ा अलग किया ताकि वो पीछे हट सके। अब डरने की कोई बात नहीं, उसने ठंडे लहजे में कहा, फिर आगे बढ़ा और झुककर बाथरूम के पास देखा।
सचमुच एक कॉकरोच रेंग रहा था। उसने तौलिया से उसे झटक कर बाहर कर दिया और दरवाजा बंद कर दिया। हो गया, अब तो ठीक है, उसकी आवाज सधी हुई थी, जैसे किसी बच्ची को समझा रहा हो। शामली अब भी कांप रही थी। आपको पता नहीं, जब वो चलता है ना तो जैसे मेरे दिल में कुछ रेंगता है। विश्वनाथ हल्के से मुस्कुराया। वो पहली बार था जब उसके चेहरे पर सख्ती नहीं थी। छोटे छोटे डर और इतनी बड़ी दुनिया, उसने खुद से बुदबुदाया, फिर बोला, चलो बाहर चलो, तुम पूरा बाथरूम भिगा दोगी। शामली ने धीरे से सिर हिलाया और फर्श से साड़ी संभालते हुए उठी। वो अभी भी थोड़ा उसके करीब थी, उतना करीब जितना शायद उसने पहले कभी नहीं देखा था। विश्वनाथ ने एक पल उसे देखा, उसकी सादगी, उसकी मासूमियत और वो डर जो उसे और भी नाजुक बना देता था, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं आया। वो पीछे हटा, बस इतना कहा, डरो मत, यहाँ कुछ नहीं है, शामली ने धीरे से कहा। आप तो डरते नहीं किसी चीज से। विश्वनाथ ने कॉफी टेबल पर रखे कप की ओर देखा, फिर उसकी आंखों में डर नहीं। फिर थोड़ी देर रुककर बेहद ठंडे स्वर में बोला, डर तो सिर्फ उन लोगों को होता है जिनके पास कुछ खोने को होता है। शामली कुछ पल उसे देखती रही, उसकी बातों में एक ऐसा सन्नाटा था जो किसी जख्म जैसा लगता था। आप बहुत अलग हैं, उसने धीमे से कहा। विश्वनाथ ने हल्की मुस्कान दी। शायद इसीलिए हमारा रिश्ता भी थोड़ा अलग है, प्यार का नहीं, समझौते का। शामली की आंखें झुक गईं, उसने सिर हिलाया। हाँ, मुझे पता है। भाप अब धीरे धीरे खत्म हो रही थी, कमरा ठंडा पड़ने लगा था। विश्वनाथ दरवाजे की ओर बढ़ा, फिर रुका और पीछे देखे बना बोला, अगली बार अगर कॉकरोच दिखे तो मुझे पुकारना, पर इतना जोर से नहीं कि पूरा घर सोच ले कुछ हो गया। शामली हल्के से मुस्कुराई, पहली बार उस डर के बीच। ठीक है, वो बाहर चला गया और वो कुछ पल वहीं खड़ी रही, अब भी गीले बालों से टपकती बूंदों के बीच, पर इस बार उसके चेहरे पर थोड़ा सुकून था। कभी कभी एक कॉकरोच भी दो लोगों के बीच की ठंडक को कुछ पल के लिए पिघला देता है। कमेंट करने का क्या लोगे दोस्तों, प्लीज कमेंट कर दिया।